यह एपिसोड टीबीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस के समर्थन से तैयार किया गया है।
शहर के जीवन से बहुत दूर समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर ऊपर जनवरी की कड़क सर्दी में जब तापमान शून्य से लगभग 20 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है, संपूर्ण अंधेरे में जहां आप केवल तेज हवा या कभी कभी केवल पक्षियों की आवाज ही सुन पाते हैं और जहां आसमान की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आज हम आपको वहीं हानले में स्थित खगोल विज्ञान स्टेशन में ले जा रहे हैं। मैं हूं आपकी होस्ट शुभ्रा प्रियदर्शिनी और आप मुझे सुन रहे हैं नेचर इंडिया पॉडकास्ट में। वैज्ञानिक और उनके अनोखे कर्म क्षेत्र में हमारे साथ हैं इंजीनियर और एस्ट्रोफोटोग्राफर दोर्जे आंगचुक। दोर्जे 1998 से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हैनले प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं। फिर उन्होंने एक दशक बाद अंतरिक्ष में अपना कैमरा आकाश की ओर कर दिया और खगोल विज्ञान को कुछ प्रसिद्ध और लोकप्रिय चित्र दिए हैं और इसी कला ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में मानक सदस्य या ऑनररी मेंबर के रूप में स्थान दिया है। दोर्जे, आपका बहुत स्वागत है। आज इस श्रृंखला में हम आपके इस अनोखे कार्यस्थल के साथ साथ आपके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे।
जी बिल्कुल, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी तारा भौतिकी संस्थान में इंजीनियर इंचार्ज हूँ और मैं यहाँ 1998 से, जब से बनना शुरू हुआ था मैं तब से एसोसिएटेड हूँ और मैं बहुत ही अपने आप को लकी मानता हूँ। जहाँ पे मेरा घर है वहीं पे मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ये सोच के मैंने ज्वाइन किया। ये ऑब्जर्वेटरी जो है 98 में बन रहा था जब मैं यहाँ पे इंडक्ट हुआ था। सबसे पहला जो टेलीस्कोप है वो है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, वो लगा और वो अभी तक ऑपरेशनल है और भारत देश में ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव टेलीस्कोप है।
चलिए आपके साथ हम सफर करते हैं, हमारे श्रोताओं को लेह से हानले तक आपके साथ ले चलते हैं।
जी बिल्कुल, लेह से हम पहले लेह मनाली रोड से निकलेंगे जो मनाली डायरेक्शन की तरफ जाता है, तो वो 50 किलोमीटर तक जैसे पहुंचते हैं तो हमें डायवर्जन लेफ्ट साइड से लेंगे। आगे बाकी 200 किलोमीटर हम हानले की तरफ सिंधु नदी के साथ साथ चलते रहेंगे। तकरीबन 5-6 घंटे में हम वहां पहुंच जाते हैं। बीच में हमें चुमातंग हॉट स्प्रिंग देखने के लिए मिल जाता है। जो ऑब्जर्वेटरी जो एरिया है वो फ्लैट लैंड है। हमें सबसे पहला जो दृश्य दिखता है वो हानले गुम्पा का है जो तकरीबन 500 वर्ष पुराना है। दूसरा सुंदर दृश्य जो दिखता है वो हमारा ऑब्जर्वेटरी का है।
यहाँ अब शाम हो गई है पहुंचते पहुंचते, तो श्रोताओं के साथ आसपास के दृश्य को साझा करते हैं।
हालने में सबसे अच्छी बात जो है दिखेगी वो है क्लीन एटमॉस्फेयर, हम उसको टेक्निकल टर्म्स में एरोसोल बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी स्मोक डस्ट पॉल्यूशन नहीं है और आपको सब कुछ इतना सुंदर और आपके आसपास नजदीक दिखेगा क्योंकि उसमें पॉल्यूशन डस्ट पॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, तो आपको पहाड़ी बहुत सुंदर दिखेगा। और जैसे ही रात होती है तारों का जो दृश्य है जिसकी वजह से हम ये तारा भौतिकी संस्थान यहाँ पे लगाया हुआ है उसका दृश्य दिखता है और वो बहुत ही इंचेंटिंग है। और मिल्की वे तो आपको ऐसे दिखेगा जैसे कि किसी ने कैमरा में खींचा हो, वन ऑफ द लाइफ में मोस्ट अमेजिंग व्यू हमें मिलेगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एमेचर फोटोग्राफर और एस्ट्रोनॉमर्स आए जो काफी सालों से उनका हॉबी ये रहा है, वो लोग मेरे से बोलते हैं कि ये जन्नत है हमारे लिए, इतने सारे तारे दिखते हैं जो आम कॉन्स्टेलेशन बाकी अन्य जगहों से दिखते हैं तो वो पहचान में नहीं आते क्योंकि इतने सारे तारे दिखते हैं वहां से।
एस्ट्रोफोटोग्राफी पिछले कुछ सालों में काफी लोकप्रिय हुआ है, काफी लोग इससे प्रेरित हो रहे हैं और हालांकि ये आपका मूल विषय नहीं है, आप पेशे से इंजीनियर हैं, तो इसके बारे में बताएं कि किस तरह इसने आपके करियर को एक दूसरी दिशा दी है।
तो 1998 से 2010 तक का, एक तो लद्दाख जो है बहुत ही सुंदर है, तो उसके साथ अगर तारों का भी दृश्य देख सकते हैं, उसको हम नाइटस्केप बोलते हैं, नाइट प्लस लैंडस्केप। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना शुरू हुआ था 2010 के बाद, जब हमारा कैमरा का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही इम्प्रूव हुआ है और रात का दृश्य भी बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। मेरे एक एस्ट्रो फोटोग्राफर गुरु जो एक दो दिन के लिए आए थे, तब मैं उनको अच्छी तरह से जानता नहीं था, मैंने सोचा कि ये दो तीन दिन में इतना अच्छा फोटो खींच सकते हैं, पिक्चर खींच सकते हैं, मैं जो वहां पे बैठा हुआ मैं तो और भी अच्छी तरह से दिखा सकता हूँ। कैमरा उठाया और मेरा एस्ट्रो फोटोग्राफी का एज एन हॉबी जर्नी शुरू हुआ। जो दृश्य किसी ने ना देखा हो जब हम दिखा सकते हैं तो लोग बहुत ही प्रभावित होते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं उससे, और वो मेरे को भी अच्छा लगने लगा कि मैं लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ जो फोटोग्राफी होता है और एस्ट्रोनॉमी के साथ जो साइंस है, और मैं इसमें थोड़ा आगे बढ़ता रहा।
और फिर इसी तरह आप पहले ऐसे भारतीय बने जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मानक सदस्य के रूप में शामिल हुए, ये अनुभव कैसा रहा?
ये बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था या सोचा, किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि एक ऑनररी मेंबर ऐसा कुछ चीज होता है। प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स थ्रू आउट इंडिया उन्होंने मेरे को नॉमिनेट किया इंटरनेशनल ऑनररी मेंबर के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में। 2010 में इंडक्शन हो गया है और मैं पहला भारतीय हूँ जो एस एन ऑनररी मेंबर है। अदरवाइज प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स तो बहुत सारे हैं जो आईयू के मेंबर्स हैं। आपको एक दर्जा है, आपको और भी लोगों को एस्ट्रोनॉमी से इंस्पायर करते रहना है, तो वही मेरा मोटिवेशन भी है।
आपकी खींची हुई एक तस्वीर बहुत फेमस हुई थी कॉमेट नियोवाइस की, उसने काफी अवार्ड्स भी जीते एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के, उसके बारे में कुछ बताइए और साथ ही उस जैसी कुछ और प्रेरणादायक तस्वीरों के बारे में बताएं जो आपको खुद बहुत पसंद हो।
जब ये एक ध्रुव तारा आया था, इसको बोलते हैं नियोवाइस, 2010 में जब पेंडेमिक था और कोई अब आगे पीछे जा नहीं पा रहा था, मेरे को बहुत ही आइडियल कंडीशंस मिले जब मैं इसी ध्रुव तारे को अपने गांव के मॉनेस्ट्री जहाँ पे हमारे मॉन्क्स सारे रिट्रीट करते हैं और वो प्रेयर्स करते हैं, तो उसके साथ दिखा पाया, तो ये बहुत ही लोगों को पसंद आया और अच्छा भी मौका था, क्योंकि ये जो ध्रुव तारा था लगभग 6700 साल के बाद ही आता है और ये हमारे नेकेड आईज आंखों से भी देख पाते हैं, ऐसे बहुत ही कम ध्रुव तारे होते हैं। इसमें दो पिक्चर्स थे, पहला पिक्चर जो मैंने गांव में खींचा था तो वो तो उसने एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने कंटेस्ट किया था, एक जो न्यू वाइस का सबसे अच्छा पिक्चर उसमें फर्स्ट आया था, और दूसरा मैं दो तीन दिन के बाद फिर मैं ऑब्जर्वेटरी गया तो वहां पे मैंने और टेलीफोटो ऑब्जर्वेटरी के साथ इसी न्यू वाइस का खींचा था, तो वो भी उसको भी काफी जजेस ने सराहा और उस कहा कि मतलब ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग पिक्चर है। ऐसा एक इवेंट जो कभी कभी दिखता है और कभी कभी होता है, तो वो कैप्चर करने में ज्यादा अभी मजा आता है, क्योंकि मिल्की वे ज्यादा चेंज होता नहीं है, वो वही रहता है, भले आपका मेरा लैंडस्केप आजकल चेंज हो जाता है। इसी तरह से काफी सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में सुपरनोवा आरएस नोवा बोलते हैं, तो वो हर 15 साल में एक बार ग्लो हो जाता है और फिर वो जो रोशनी कम कर देता है। तो मैं 2001 में अगस्त में ऑब्जर्वेटरी में था और अचानक सा वो हमें इंफॉर्मेशन मिला कि ग्लो हुआ, और वो पिक्चराइज करने में बहुत ही मेरे को अच्छा लगा कि ऐसा एक चीज मैं देख रहा हूँ जो मैं ही अकेला उधर से पिक्चर्स कर सकता था और वो ऑब्जर्वेटरी के साथ।
बहुत बढ़िया, डार्क स्काइज की जो हेरिटेज है और आप जो डार्क स्काइज सैंक्चुअरी बनाने के लिए लद्दाख और हानले को अगली पीढ़ियों के लिए प्रिजर्व करने के लिए जो मुहिम कर रहे हैं उसके बारे में हमें जरूर बताएं।
जी, मैंने शुरू में बहुत जगह पढ़ा था कि ऑब्जर्वेटरी के आसपास हमेशा लाइट कम होना चाहिए, क्योंकि जो हम तारों को देख रहे हैं उनका लाइट इतना फेंट होता है कि अगर हम अपने आसपास और लाइट पोल्यूशन करें तो वो वाला दिखना कम हो जाएगा, उसको वो लाइट हमें हम तक पहुंच नहीं पाएंगे। एक दो ऑब्जर्वेटरीज हैं जिनको बंद करना पड़ा क्योंकि लाइट पोल्यूशन उस जगह बहुत ज्यादा हो गया था। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम ऑलरेडी लाइट पोल्यूशन से दूर जा रहे हैं, रिमोट जगह पे अपना ऑब्जर्वेटरीज लगा रहे हैं, वो जगह भी अगर डेवलप होगा और लाइट पोल्यूशन ज्यादा होगा तो हमें फिर दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज था जो इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन कर रही है, जहां पे भी ऑब्जर्वेटरी है और या जहां पे भी ऐसे प्लेसेस है उनको डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी पार्क डेजिग्नेट किया जाता है। तो हमारा मेन मोटिवेशन है आप लाइट यूज करो और जहां जरूरत है वहां यूज करो और जितना जरूरत है आप उतना यूज करो। इस हिसाब से हमने एक लाइट मैनेजमेंट प्लान बनाया हमने डार्क स्काई रिजर्व का, ब्लू एलईडी लाइट को हटा के वार्म एलईडी लाइट लगा रहे हैं जो कम दूर तक जाता है, पर्दा डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि अंदर का जो लाइट है वो बाहर तक ना जा पाए, और बाहर लाइट हो तो उसको शेड करें, ऊपर की तरफ ना फेंके, सिर्फ जमीन की तरफ हो जहां पे हमें जरूरत है। तो ये सब लाइट मैनेजमेंट प्लान करके हम लोग गांव वाले से मिले तो एक म्यूचुअल जो कोलैटरल बेनिफिट होता है, लोग टूरिस्ट सब लोग आके नाइट स्काई को अप्रिशिएट करें, एंजॉय करें, एजुकेट हो और उससे अपना रोजगार चला सकते हैं। जैसे कि आप होम स्टे निकाल सकते हैं और आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं जहां पे लोग आके खा के बैठेंगे, और आप को टेलीस्कोप दिया जाएगा, लोगों को स्पेस का दृश्य दिखा सकते हैं, जैसे कि आप सैटर्न, नेबुलास, जुपिटर, प्लैनेट, मून एक्सेट्रा आप दिखा सकते हो। तो हमने ये प्रपोजल रखा और यूटी गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाइड किया कि हमने डार्क स्काई सेंचुरी होगा और यहाँ पे लाइट मैनेजमेंट प्लान को पास किया जाए और इसको लागू किया जाए। बेनिफिट ये जो है सिर्फ ये हानले के लिए नहीं है, ये हर एक जगह के लिए है। जैसे कि जब सिटीज जाते हैं स्काई का दृश्य रात को देखना चाहते हैं तो हमें क्या दिखेगा, हमें सिर्फ एक तो प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, मार्स, वीनस और मून और कुछ फ्लाइट्स चलते हुए देखेंगे। हालांकि हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे तारे देखे और वो उनसे इंस्पायर हुए थे और उससे एजुकेट हुए थे। जैसे कि लद्दाख में तो ये चलता है कि हम लोग फार्मिंग करते हैं या जो भी हम ट्रेडिशनल एक्टिविटीज करते हैं तो हम वो तारों को देख के जब ये तारा राइज होगा तभी है। एस्ट्रोनॉमी को ओल्डेस्ट साइंस मानते हैं और हम सोचते हैं कि मतलब जितना हमने एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ा है उतना हम अपने बारे में और सीखते हैं। तो इसको प्रिजर्व करना और इसको बच्चों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, कहीं पे भी रेप्लिकेट कर सकते हैं तो, और ये सबके लिए बेनिफिशियल है।
जी बहुत सुंदर, सिटीजन साइंस और एस्ट्रो टूरिज्म, एक नए तरह का टूरिज्म, दोनों को मिला करके ये जो कॉन्सेप्ट आपने तैयार किया है वो एक बहुत ही उम्दा मुहिम है। साथ ही आपने कहा कि इसे किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ हैनले में नहीं। आपके खगोल विज्ञान में दूसरे इंटरेस्ट्स कौन से हैं और कौन से दूसरे शोध आपको आजकल व्यस्त रखते हैं?
एस्ट्रोनॉमी एक फंडामेंटल साइंस है, उसको आपको डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा, वर्ल्ड में या यूनिवर्स में सेकंड मोस्ट जो एबंडेंट मटेरियल है वो हीलियम है। पहले हमें हीलियम अर्थ पे नहीं मिला था, सोलर इक्लिप्स के दौरान फेंट एक स्पेक्ट्रा मिला था, जो लाइंस मिला था, तो उनसे उनको पता चला कि ये तो कुछ और चीज है जो हमारे अर्थ में नहीं मिल रहा है। उसको नाम हीलियम दिया क्योंकि ग्रीक में सन को हीलियस बोलते हैं। इस तरह से हमें पता चला हमारे सेकंड मोस्ट एबंडेंट इन द यूनिवर्स हीलियम भी होता है। और जो एग्जांपल्स हैं, सीमोस कैमरा रहता है, शुरू शुरू में इन्वेंट हुआ था तो उसको बहुत ही ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में यूज किया है। तो अभी जाके सब लोगों के जेब में जो है कैमरा है विद मोबाइल और वो हर जगह यूज होता है। तो ये एस्ट्रोनॉमी ने क्या किया था, इसको और बढ़ावा दिया था, इस रिसर्च को और भी आगे बढ़ाया था। इसी तरह से आप जब एयरपोर्ट्स पे जाते हैं या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, एक्सरे स्कैनिंग जो होता है मशीन, जो पहले एक्सरे ऑब्जर्वेटरी में डाला गया जो फिर आपका एवरीडे लाइफ में आता है, इसी तरह से आप मेडिकल में MRI, CT स्कैन, वो सब पहले एस्ट्रोनॉमी में आया था और फिर हमें बाद में डे टू डे लाइफ में मिला है। सब लोग GPS यूज करते हैं, अपना लोकेशन क्वाजार्स एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट उससे मिलते हैं जो स्टार वार्स से, जो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी से ये सब फायदा होता है।
आपका कार्यक्षेत्र बहुत ही अलग है, अपने कार्यक्षेत्र के बारे में हमें थोड़ा और कुछ बताइए, कैसे आपका वक्त गुजरता है जब आप हानले में होते हैं?
तो सुबह उठ के टेलीस्कोप को चेक करना, रात का लॉग्स चेक करना कि क्या हुआ है, प्रॉब्लम तो नहीं आया, उसको अटेंड करना, डाटा चेक करना और वहाँ का जो वेदर अपडेट्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम उसको ठीक करना। टेलीस्कोप पे इंस्ट्रूमेंट लगता है जो काफी हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो इन सबको हम लोग मेंटेनेंस करके, केस इंस्पेक्ट करके, रेडी टू ऑपरेट करके, और इसी में हमारा इतना समय निकल जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे हमारा समय गुजर गया है। ठंड बहुत होता है उधर, यहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस हुआ था और हवा तो चलता ही है, तो वो थोड़ा सा आपको सहन करना पड़ता है। हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि टेलीस्कोप अभी भी अच्छा चल रहा है इतने सालों के बाद।
लाइट पोल्यूशन जीरो होने के साथ साथ साउंड पोल्यूशन भी जीरो है आपकी कर्म भूमि में, तो क्या कोई आवाजें सुनने को मिलती भी हैं अमूमन जब आप काम कर रहे होते हैं?
हाँ जी बिल्कुल, लाइट पोल्यूशन तो जीरो है, डस्ट पोल्यूशन जीरो है, साउंड पोल्यूशन वो जीरो है, लेकिन क्योंकि हमारा जो डोम का स्ट्रक्चर है वो एल्युमिनियम और स्टील आयरन फ्रेम्स का बना हुआ है, तो अब बाकी ऑब्जर्वेटरी में जो लोहे का गट 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 वो बहुत ज्यादा सुनाई देता है, तो उसको म्यूजिकल तो कह नहीं सकते, लेकिन वो थोड़ा सा और भी मेंटली आपको ठंड बताता है कि वहाँ ज्यादा हवा चल रहा है बाहर और ज्यादा ठंडा होगा। अदर देन वहाँ पे बिल्कुल ही साइलेंट एटमॉस्फेयर है, बहुत ही एंजॉय करते हैं, कभी किसी चिड़िया का जो चीख सुनाई देता है आपको, भले वो बहुत ही दूर 4-5 किलोमीटर का हो। हल्ले को हम बेसिकली ये हेवन है बर्ड्स वॉचर्स के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, जैसे कि एक लैमरगियर जिसको हम स्कैकलॉग बोलते हैं, और जटायु भी है, ईगल्स के काफी, ब्लैक नेक क्रेन जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है 4,000 मीटर के ऊपर रहता है, तो ये सब वहाँ पे काफी संख्या में पाए जाते हैं।
दूर जी, आप हमें बता रहे थे कि आपके पिताजी का जीवन भी काफी प्रभावशाली और प्रेरणादायक रहा है, उसके बारे में हमें बताइए।
जी, मेरे फादर डॉक्टर हैं, फिजिशियन है, उनको 2018 में पद्मश्री उनके काम के लिए मिला हुआ है, वो अभी बहुत ही एक्टिव हैं रिसर्च में, और के पास एक इंस्टीट्यूट है लद्दाख इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंशन, तो वो गांव गांव हान ले जाते हैं, संस्कार जाते हैं, रिमोट एरिया में प्रोपोगेट करते हैं कि हम लोग अपने आप को कैसे प्रिवेंट करें मॉडर्न डे डिजीज से। उन्होंने अपना जो कार्य है, जो डॉक्टर जब डिप्यूट हुए थे वो भी उसी एरिया में डिप्यूट हुए थे, मतलब जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूं, और उनको बहुत सारी यादें वापस लाई जब वो वहां पे घोड़े पे चला करते थे, चलो हम तो आजकल गाड़ी में चल रहे हैं, जो है चांगथम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बड़ी है, तो वो पूरा इलाका उन्होंने तब घोड़े पे चले थे और लोगों को ट्रीटमेंट करते करते उन्होंने काफी जगह को कवर किया था।
जी दोरजी, आगे आपका और क्या क्या करने का इरादा है?
बहुत अच्छा समय गुजरा है, अभी 50 साल के हो गए मेरे लिए, तो अगर हाले नाक स्काई रिजर्व अच्छी तरह से चले तो वो काफी सेटिस्फाइंग रहेगा, और चाह तो ये है कि हर जगह और भी नाक स्काई रिजर्व सेंचुरी बने। हम बोलते हैं स्टेरी स्काइज, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है या हमारा हेरिटेज है उसको बनाए रखे, और जो हमारे पूर्वज जिसको एक्सपीरियंस और एंजॉय करते हैं सब लोग अभी भी करें, तो वो मेरी मोटिवेशन अभी लाइफ में।
नेचर इंडिया की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद। खगोल विज्ञान की खोज निश्चित रूप से अन्य क्षेत्रों में भी कई वैज्ञानिक शोधों को बढ़ावा दे रही हैं, और इसमें अपनी फोटोग्राफी और डार्क स्काइज की मुहिम के साथ दोरजे का योगदान इस खूबसूरत शोध को और खूबसूरती तक पहुंचा रहा है। वैज्ञानिक और उनके अनोखे कर्म क्षेत्र का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो दोस्तों और सहकर्मियों के साथ नेचर इंडिया पॉडकास्ट को साझा करें। ट्यून इन करने के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपकी होस्ट शुभ्रा प्रियदर्शिनी, और ये है भारत में विज्ञान से जुड़ी सभी चीजों के लिए बना आपका अपना पॉडकास्ट नेचर इंडिया पॉडकास्ट।
इस एपिसोड के समर्थन के लिए डीबीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस को धन्यवाद।